समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, 2025 का आगाज हो चुका है। सदी की सिल्वर जुबली यानी रजत जयंती है। बीता साल भी कैसे पंख लगाकर उड़ गया ना। तो दोस्तों, समय ऐसे ही निकलता जाता है, जीवन ऐसे ही चलता जाता है। जैसा कवि नीरज लिखते हैं, जिनकी आज जयंती है और जिन पर हम कार्यक्रम में आगे बात भी करेंगे, कि नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पांव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई, पात पात झर गए कि शाख शाख जल गई, चाह तो निकल सकी ना पर उम्र निकल गई। तो इसलिए हर दिन को भरपूर जिए, खुद के लिए समय निकालें, पॉजिटिव रहें और अपने आसपास भी उस पॉजिटिविटी, उस सकारात्मकता को फैलाते बढ़ाते रहें। स्वागत है आपका कार्यक्रम परिक्रमा में। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे देश और दुनिया की नई ताजा खबरें, विभिन्न राज्यों की परिक्रमा भी हम करेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के माध्यम से, खेलों की दुनिया पर भी रहेगी हमारी नजर और उन हस्तियों को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या फिर जन्मदिवस। परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं मुदिता और मेरे साथ है मेरी को होस्ट अनुजा कुमार। अनुजा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून मुदिता। मुदिता, यू जस्ट रेफर्ड अबाउट समथिंग पॉजिटिव, पॉजिटिविटी इन लाइफ एंड यू मस्ट हैव रेड इट इन द न्यूज पेपर्स टूडे अबाउट द इनक्रेडिबल जर्नी ऑफ 39 ट्रांसजेंडर्स इन हैदराबाद हु हैव बीन अपॉइंटेड ऑन अ पायलट बेसिस एज ट्रैफिक असिस्टेंट्स टू हेल्प द सिटी पुलिस and how they are overjoyed because they are now getting respect from citizens in contrast to the severe discrimination and insults they faced in the past. This is an inspiring journey of their empowerment and such decisions by the government are worth mentioning, which are really inspiring for others.
Bilkul, bilkul, Rija.
And of course, moving on, let's begin today's episode with news making headlines at this hour.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण लोगों को सम्मानजनक जीवन देने की अपनी सरकार की प्राथमिकता दोहराई। श्री मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में 6 दिवसीय ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन किया।
India's rural poverty declines to 4.86% in last fiscal compared to 25.7% in 2011-12, says the SBI report.
भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 29 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की।
प्रकाश उत्सव मार्किंग 358th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु गोबिंद सिंह बिगिन्स इन पटना।
उत्तर भारत में भीषण शीतलहर जारी और मौसम विभाग ने रात के समय घना कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया।
And as always, it's now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. And today we will talk about Grameen Bharat Mahotsav and also World Braille Day. The soul of India lives in its villages, as said by Mahatma Gandhi.
और अभी एक लाइन में पढ़ रही थी कहीं अनुजा कि माँ ने अपने दर्द भरे खत में लिखा, सड़कें पक्की हैं अब तो गांव आया कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गांवों को विकास और अवसर के सजीव केंद्रों में बदलकर ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के सरकार के दृष्टिकोण पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार गांवों के लोगों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करने की प्राथमिकता के साथ लगातार ग्रामीण भारत की सेवा कर रही है।
राइट, द ग्रामीण भारत महोत्सव इज अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म सेट बाय नाबार्ड इन एसोसिएशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इट इज एन opportunity for all of us to interact with the finest minds in the handicrafts, organic farming and development sector at one place. The Prime Minister added in that program that the government has launched a campaign to ensure basic amenities in every village. The Prime Minister said this while addressing the gathering after inaugurating Grameen Bharat Mahotsav, which is being held at Bharat Mandapam in New Delhi from the 4th to the 9th of January. And the theme of this Mahotsav is Building a Resilient Rural India for a Viksit Bharat 2047.
गांव के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देना, ये मेरी सरकार की प्राथमिकता है। हमारा विजन है भारत के गांव के लोग सशक्त बने, उन्हें गांव में ही आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, उन्हें पलायन ना करना पड़े, गांव के लोगों का जीवन आसान हो। और इसलिए हमने गांव गांव में मूलभूत सुविधाओं की गारंटी का अभियान चलाया।
Yes, the Mahotsav, through various discussions, workshops and master classes, it aims to enhance rural infrastructure, create self-reliant economies and foster innovation with rural communities. Its objectives include promoting economic stability and financial security among rural populations, with a special focus on Northeast India by addressing financial inclusion and also supporting sustainability. It is rightly said by Mahatma Gandhi, a nation's culture resides in the hearts and in the soul of its people.
बिल्कुल अनुजा, और ये गांधी के अंत्योदय का जो सिद्धांत था, ये उसको ही हम ग्राउंड लेवल पर लेकर के आ रहे हैं, जिसको कहना चाहिए ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 वित्तीय सेवा विभाग और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की एक पहल है। इस महोत्सव का उद्देश्य विभिन्न चर्चाओं, कार्यशालाओं और मास्टर क्लास के माध्यम से ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाना और ग्रामीण समुदायों के भीतर नवाचार को बढ़ावा देना है। इसके उद्देश्यों में वित्तीय समावेशन और टिकाऊ कृषि प्रथाओं के साथ ग्रामीण आबादी के बीच आर्थिक स्थिरता और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देना शामिल है, जिसमें उत्तर पूर्व भारत पर विशेष ध्यान देने की बात भी कही गई है।
Yes, it is a celebration of rural India, the soul of India. A significant focus of the Mahotsav will be to empower rural women through entrepreneurship, bring together government officials, thought leaders, rural entrepreneurs, artisans and stakeholders from diverse sectors to build a roadmap for collaborative and collective rural transformation, encourage discussions around leveraging technology and innovative practices to enhance rural livelihoods, and also showcase India's rich cultural heritage through vibrant performances and exhibitions.
और अनुजा, कोविड के बाद से दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाएं जिस तरह की चुनौतियों से जूझ रही हैं, तो उसका सामना करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे किसानों के लिए सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करते हुए वर्ष 2025-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जारी रखने की घोषणा की है। ग्रामीण भारत में 1.5 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं ला रहे हैं। इसके अलावा डिजिटल प्रौद्योगिकी के साथ गांवों में अब टेलीमेडिसिन सुविधाओं तक पहुंच है, जो उन्हें देश के कुछ सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों और अस्पतालों से जोड़ती है। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी सफलता है हमारी कि गांवों के सेंटर्स को हम जोड़ पा रहे हैं टेलीमेडिसिन के थ्रू बड़े बड़े डॉक्टरों और हॉस्पिटल्स से।
एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑल्सो एम्फसाइज दैट ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स लाइक स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना एंड द जल जीवन मिशन आर एनहांसिंग द क्वालिटी of life in rural areas. Today, clean drinking water reaches households in lakhs of villages, ensuring healthier lives for millions. And under the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, a total assistance of impressive 3 lakh crore rupees has been dispersed to farmers, providing them with the means to prosper. Of course, this Mahotsav symbolizes the aspirations, achievements and the spirit of self-reliance in rural India, reaffirming that the villages are the core of nation's progress. And next topic we have to discuss on is World Braille Day.
जी अनुजा, और जैसे कहते हैं ना कि दृढ़ संकल्प जो है वो शारीरिक और सभी तरह के अभाव पर विजय प्राप्त करता है, तो नेत्रहीन और आंशिक रूप से दृष्टि बाधित लोगों के लिए संचार माध्यम के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और श्रोताओं, आपको बताएं कि इस दिन क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल का जन्मदिन है। 1809 में फ्रांस में आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था, और संयुक्त राष्ट्र ने 2018 में इसको विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। 2019 में पहली बार इस दिन को मनाया गया था। हम
राइट, एंड द थीम फॉर दिस ईयर्स वर्ल्ड ब्रेल डे इज सेलिब्रेटिंग एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूजन फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड। एटलीस्ट 2.2 बिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड हैव अ नियर और डिस्टेंट विजन इम्पेयरमेंट एज पर द एस्टिमेट्स ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एंड नियरली 1 बिलियन और ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दीज केसेज आर द वंस वेयर विजन इम्पेयरमेंट कुड हैव बीन प्रिवेंटेड और इट इज येट टू बी एड्रेस्ड। सो कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, लुई ब्रेल, he started this tactile writing system, which transformed the lives of countless individuals, offering a bridge to literacy and independence. Louis Braille is a name that shines as a beacon of hope and empowerment for the visually impaired. His invention, the Braille system, has revolutionized how blind individuals access education, they communicate and participate in society. And that's why the journey of this Frenchman who turned his personal challenges into a global gift continues to inspire millions.
Bilkul Anuja, aur jab hum baat karte hain Louis Braille ki, to iski prerna unko kahan se mili thi Braille lipi ki? उसके बारे में शायद ज्यादा लोगों को नहीं पता है. दरअसल फ्रांसीसी सेना के एक अधिकारी थे, कैप्टन चार्ल्स बारबियर. वो जब लुई ब्रेल के स्कूल में एक बार आए थे और उन्होंने बताया कि अंधेरे के समय, युद्ध के समय, जब अंधेरे में उनको कोई संदेश देना होता है तो तब वो नाइट राइटिंग यानी रात्रि लेखन की एक लिपि होती है उनके पास, जिसको वो रात के अंधेरे में छू करके पढ़ा जा सकता है. यहां से लुई ब्रेल को इसका आइडिया मिला और उसके बाद उन्होंने उसको आगे डेवलप किया, को विकसित किया और 1824 में पूर्ण हुई ये लिपि दुनिया के लगभग सभी देशों में आज उपयोग में लाई जाती है.
राइट मुदिता, द सिंप्लिसिटी एंड द वर्सेटिलिटी ऑफ दिस सिस्टम अलाउज इट टू बी यूज्ड फॉर अ वाइड रेंज ऑफ पर्पसेस, इंक्लूडिंग रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स एंड ऑल्सो म्यूजिक. एंड विथ एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, द रिफ्रेश्ड ब्रेल डिस्प्लेज एंड ब्रेल कंपैटिबल डिवाइसेज आर मेकिंग द सिस्टम इवन मोर एक्सेसिबल टुडे. एंड ऑफकोर्स टू कमेमोरेट World Braille Day, the National Federation of the Blind today organized an event in New Delhi. And speaking at the event, General Secretary of the National Federation of the Blind, S.K. Rungta, stressed that nowadays with the advent of technology, people are using Braille as a substitute. Various national level competitions like Braille reading, Braille writing and debate are also organized for visually impaired students across the nation on the occasion of World Braille Day.
और श्रोताओं, अब समय है विभिन्न राज्यों की परिक्रमा का और अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या है खास. झारखंड के गढ़वा जिले का बूढ़ा पहाड़, जो कुछ समय पहले तक नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब यहां सुरक्षा बलों का कब्जा है और इस क्षेत्र में अब पूरी तरह अमन चैन बहाल हो गया है. आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट.
कभी उग्रवादियों के गढ़ बूढ़ा पहाड़ के क्षेत्र में नक्सलियों की गोलियों की आवाजें गूंजा करती थी, पर अब वहां हैप्पी न्यू ईयर की शुभकामनाओं की गूंज सुनाई पड़ रही है. लोग बताते हैं कि पहले यहां आने में डर लगता था, लेकिन अब यहां की मनोरम वादियां उन्हें सुकून देती हैं.
सुना तो बहुत था, लेकिन कभी डर लगता था कि नक्सलाइट है, लेकिन यहां पे आके ऐसा नहीं लगा.
पर्यटकों का ये भी कहना है कि इस क्षेत्र को प्रकृति ने काफी फुर्सत से सजाया है. इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर विकसित किए जा सकते हैं. नागरिकों की हलचल बढ़ने से सुरक्षा बल भी उत्साहित है. सीआरपीएफ 172 बटालियन के कमांडेंट एनके सिंह कहते हैं कि इस क्षेत्र में लोगों की आवाजाही इस बात का प्रमाण है अब यहाँ पूरी तरह से अमन चैन लौट आया है.
मैं आप सभी को अवगत करा देना चाहता हूं कि सितंबर 2022 में बूढ़ा पहाड़ को, जो उग्रवादियों का गढ़ माना जाता था झारखंड का, वहां पर हमने अपना कैंप स्थापित किया. आज इस प्रकार वहां अमन चैन और भयमुक्त वातावरण बन गया है कि अभी देखने में आया है कि 9 वर्ष के अवसर पर काफी गढ़वा से भी लोग जाकर वहां पिकनिक मना रहे हैं और भयमुक्त होकर भ्रमण कर रहे हैं और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं. यह इस बात का द्योतक है कि हम लोगों ने किस प्रकार विगत सालों में हमने वहां पर अमन चैन स्थापित किया है.
पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई कर वर्ष 2022 में बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त कराया था. अब यहां सीआरपीएफ का कैंप है और इस क्षेत्र के लोग अब बेखौफ हैं तथा उन तक विकास की किरणें भी पहुंचने लगी हैं. परिक्रमा के लिए रांची से शिल्पी.
And now from Jharkhand, we take you all to Vishakhapatnam, where Jyoti Yaraji, a 25-year-old athlete, has been honored with the esteemed Arjuna Award this year. As a pioneer in Indian athletics, she has made history by becoming the first Indian woman to qualify for the 100-meter hurdles at the Paris 2024 Summer Olympics. More from our correspondent.
Jyoti serves as an inspiration to young individuals aspiring to excel in sports, demonstrating remarkable perseverance despite financial challenges. Her passion for athletics ignited during her early days, particularly while attending Port High School, where she began to train and subsequently earned a medal in school competitions. Initially, she competed in 3 sprint categories before advancing to the national level through participation in the State Sports Authority training camp. In 2019, she joined the Center of Excellence in Guntur, where she had been previously been competing nationally without achieving her desired outcomes. Within a single year, she achieved multiple international medals, attained the 24th position in world rankings, and qualified for the Olympics, competing against the world top female hurdlers. Jyoti expressed her joy upon receiving the news of her selection for the Arjuna Award. Arjuna Award, which honors excellence, leadership, and discipline in sports, is set to be presented by the President of India on January 17th at Rashtrapati Bhavan. This is Satyanarayana for Parikrama from Vishakhapatnam.
और अनुजा, हमारी रोड्स दिन ब दिन जिस तरह असुरक्षित होती जा रही हैं, तो उससे हमें ये तो समझ में आने लगा है कि ड्राइवरों को ड्राइविंग में वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करना सड़क सुरक्षा में निवेश है. और इसके लिए पुणे स्थित ड्राइवर प्रशिक्षण और शिक्षा संस्थान पिछले 10 सालों से कार्यरत है. 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा स्थापित इस संस्थान ने अब तक देशभर के ड्राइवरों को ठोस वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान किया है. आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट.
संगठन का उद्देश्य प्रशिक्षित ड्राइवर तैयार करना है. निजी कंपनियों सहित सरकारी सेवाओं में ड्राइवरों को प्रशिक्षण भी IDTR के माध्यम से प्रदान किया जाता है. यातायात की वर्तमान स्थिति और दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए अच्छे ड्राइवरों को तैयार करना बहुत आवश्यक हो गया है. ये संगठन प्रशिक्षण कक्षाओं के माध्यम से बेहतर ड्राइवर तैयार कर रहा है तथा आम नागरिकों मुख्यतः ड्राइवरों को अधिक व्यापक प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है. संगठन ने पुणे के कासारवाड़ी में न केवल अच्छी गुणवत्ता वाली पटरियां स्थापित की हैं, बल्कि अत्याधुनिक प्रणालियां भी स्थापित की है, जिसमें सिमुलेटर आधारित प्रशिक्षण, औद्योगिक दौरे और तकनीकी शिक्षा शामिल है. इस ड्राइविंग प्रशिक्षण के साथ साथ यातायात कानून, वाहन निर्माण, सड़क सुरक्षा नियम, प्राथमिक चिकित्सा, सड़क निर्माण विशेषताएं और बीमा योजना जैसे विभिन्न उपयोगी पहलुओं की जानकारी प्रदान की जाती है. यहाँ महिलाओं के साथ साथ आम नागरिक, विभिन्न ट्रैवल कंपनियों के ड्राइवर और औद्योगिक क्षेत्र के ड्राइवर भी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं. यहाँ विभिन्न कंपनियों की मदद से 1 माह का आवासीय पाठ्यक्रम चलाया जाता है. प्रशिक्षुओं के लिए आवास की व्यवस्था संस्थान परिसर के भीतर छात्रावासों में की जाती है. हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा जर्मनी में प्रशिक्षित ड्राइवर भेजने के लिए पहल की गई है. परिक्रमा के लिए मनोज क्षीरसागर, पुणे.
और अब जनसंपर्क निदेशालय रक्षा मंत्रालय की ओर से प्रस्तुत डिफेंस न्यूज कैप्सूल में आज सुनिए DRDO के अध्यक्ष डॉ. समीर वी. कामत से ब्रॉडकास्टिंग ऑफिसर आनंद सौरभ द्वारा की गई खास बातचीत के प्रमुख अंश.
नए साल का पहला दिन यानी 1 जनवरी DRDO डे के रूप में मनाया जाता है. इस बार DRDO ने अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया. इस मौके पर हमने DRDO चेयरमैन डॉक्टर समीर वी. कामत से खास बातचीत की. आइए सुनते हैं इस साक्षात्कार के प्रमुख अंश.
पिछला एक साल काफी माइलस्टोन्स से भरा रहा, अकॉम्प्लिशमेंट से. अगर आप हमारे लिसनर्स को बताएं कि क्या क्या मेजर अकॉम्प्लिशमेंट्स आपने हासिल किए.
लास्ट ईयर हमारे लिए बहुत अच्छा रहा. मेजर अचीवमेंट मैं कहूँ तो DRDO डेवलप प्रोडक्ट्स को DAC और DPB ने 1,10,000 crores वर्थ के ऑर्डर्स प्लेस होंगे. उसके अलावा हमारा फर्स्ट हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का परीक्षण हुआ, और ये हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल टेक्नोलॉजी बहुत कम देशों के पास है. पिछले साल हम लोगों ने MIRV टेक्नोलॉजी का भी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया. उसके अलावा हमारा ये जो 5th+ generation स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, उसका सैंक्शन हमको गवर्नमेंट ने दिया. फिर हमारी जो इंडिजिनस न्यूक्लियर सबमरीन का इंडक्शन इंडियन नेवी में हुआ. ऐसे बहुत से डेवलपमेंट्स हुए जो इंडिया के आत्मनिर्भरता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स रहेंगे आगे जाके.
दुनिया में कई जगहों पे युद्ध चल रहा है, वॉरफेयर में नई टेक्नोलॉजी का उदय हो रहा है. उस दिशा में जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, उस दिशा में किस तरह DRDO कार्य कर रही है?
डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज आर प्लेइंग अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द वॉरफेयर. तो हम ये सारी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज पे भी काम कर रहे हैं. ये जो नए जो वॉरफेयर के इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं उस सारे एरियाज पे हम काम कर रहे हैं. हम एकेडमिया के साथ काम कर रहे हैं, हम इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं.
बात करें जोरावर की, जो लाइट टैंक है उसके बारे में अगर हमारे आप श्रोताओं को बताएं.
तो ये लाइट टैंक ये बहुत ही अच्छा मॉडल है गोइंग अहेड. ये हमने लार्सन एंड टूब्रो के साथ 2-2.5 साल पहले चालू किया और वी कुड मेक द फर्स्ट प्रोटोटाइप विद इन 2 ईयर्स. हाई एल्टीट्यूड में फायरिंग भी उसका किया गया, उसका वेदर इट कैन रन विदाउट एनी प्रॉब्लम्स एट दोज एल्टीट्यूड्स, दोज ऑल्सो हैव बीन ट्राइड. वी आर प्लानिंग टू कम्प्लीट आर डेवलपमेंट ट्रायल्स इन द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स.
रक्षा मंत्री ने 2025 को ईद ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया है, तो किस प्रकार आप इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, क्या क्या रिफॉर्म्स जो हैं वो आप देखते हैं आने वाले समय में?
हम लोगों ने रिफॉर्म्स के बारे में लास्ट ईयर काफी सोच विचार किया है. आप जानते ही होंगे गवर्नमेंट ने विजय राघवन कमेटी भी बनाई थी, तो उनके रिकमेंडेशंस पर हम लोगों ने इंटरनल कमिटीज बना के उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए उस पर काफी चर्चा भी की है. और इस साल ये सारे रिफॉर्म्स हम करेंगे. ये मेन पिलर्स रिफॉर्म्स के होंगे, हाउ टू इम्प्रूव आर इंटरनल एफिशिएंसी, उसके लिए एक सेट ऑफ रिफॉर्म्स हैं. दूसरे रिफॉर्म्स हैं हमारे एचआर, हाउ टू इम्प्रूव आर एचआर एंड इम्प्रूव रिवॉर्ड परफॉर्मर्स एंड इंक्रीज ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी. और थर्ड रिफॉर्म्स का स्टेप है कि हाउ टू इंक्रीज द R&D इकोसिस्टम. तो तीनों चीजों पे काम होगा और इस साल पूरा रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट होगा.
जनसंपर्क निदेशालय रक्षा मंत्रालय से परिक्रमा के लिए मैं आनंद सौरभ.
और खेल जगत की हलचल में, हॉकी इंडिया लीग में आज रांची रॉयल बंगाल टाइगर्स का मुकाबला दिल्ली SG पाइपर्स से होगा जो कि शाम 6 बजे से शुरू होगा. और दूसरा मुकाबला हैदराबाद तूफान का सामना गुनासिका से होगा. मैच रात 8:15 बजे से खेला जाएगा.
एंड ऑफकोर्स And now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
In today's episode, we remember Gandhian freedom fighter and economist Joseph Chelladurai Kumarappa, who was born on the 4th of January 1892 at Tanjore.
As an economist, Kumarappa believed that a human is not merely a wealth-producing agent, but essentially a member of the society with political, social, moral responsibilities. His essays drew the attention of Mahatma Gandhi, who turned him into a constructive worker.
At the Karachi session of Congress in 1931, Kumarappa was chosen as the convener of a select committee to study the details of the financial obligation between Britain and India. When Gandhiji went to England to attend the second roundtable conference, Kumarappa assumed the editorship of his newspaper, Young India, and he was jailed for 2 years and 6 months of rigorous imprisonment for his writings. On his release from jail, he helped Dr. Rajendra Prasad and Jamnalal Bajaj as financial advisor during the earthquake relief work in Bihar in 1934. In 1942, Kumarappa was again jailed for his article, Stone for Bread.
While in prison, he wrote 2 books, Practice and Precepts of Jesus and The Economy of Permanence. Mahatma Gandhi wrote 4 words for both these books. In 1946, he formulated an elaborate scheme for rural upliftment based on the principles of self-reliance. In 1948, when Mahatma Gandhi was assassinated, Kumarappa was so shocked that he lost vision of both his eyes. Fortunately, he regained his sight after a couple of days.
In the post-independence period, Kumarappa travelled on various missions across the globe for the national cause. Later, he retired from political life and settled down at Gandhi Niketan in Madurai district. Kumarappa breathed his last on the 30th of January 1960. We salute the great nationalist.
We also remember nationalist Maulana Muhammad Ali Jauhar, who died on the 4th of January 1931. Born in Rampur, Uttar Pradesh, on the 10th of December 1878, he was a staunch supporter of India's independence and a torchbearer of the Khilafat movement. He led a delegation to London for the Khilafat movement in 1920. On his return from England, he established Jamia Millia Islamia in 1920 at Aligarh, which was later shifted to Delhi.
Initially a member of the Muslim League, Jauhar joined the Indian National Congress in 1919 and became its national president in 1923.
और अब समय है उन हस्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिवस. और आज हम सबसे पहले याद कर रहे हैं एक ऐसे संगीतकार को जिन्हें धुनों का सरताज कहा जाता है, राहुल देव बर्मन, जिन्हें हम सब आरडी बर्मन या पंचमदा के नाम से भी जानते हैं. पंचम यानी सरगम का पांचवा सुर. कहते हैं कि नाम उन्हें अशोक कुमार ने दिया था क्योंकि आरडी जब भी कोई धुन गुनगुनाते थे तब प अक्षर का प्रयोग करते थे. घर में संगीत का माहौल था क्योंकि पिता एसडी बर्मन भी संगीतकार थे और मां मीरा देव बर्मन तो संगीतकार के साथ ही गीतकार भी थी. 9 साल की उम्र में उन्होंने पहली धुन बनाई थी जिसे एसडी बर्मन ने फिल्म फंटूश में इस्तेमाल किया. बतौर संगीतकार उनकी पहली फिल्म छोटे नवाब थी लेकिन असल पहचान बनी फिल्म तीसरी मंजिल और उसके बाद पड़ोसन से. अनुजा वेस्टर्न म्यूजिक पर तो उनकी पकड़ थी ही लेकिन साथ ही भारतीय शास्त्रीय संगीत की भी उन्हें बड़ी गहरी समझ थी. और इसीलिए देखिए ना, जहां एक ओर उन्होंने ओ हसीना जुल्फों वाली और दम मरो दम जैसे गीत बनाए हैं तो वहीं रहना बीती जाए और बीती ना बिताई रहना भी.
Yes, in fact, this man saw music in everything, Mudita.
बिल्कुल,
quite literally.
बिल्कुल,
from the sound of raindrops to the rhythm of a typewriter, RD could transform everyday sounds into magic.
जी, बिल्कुल, बिल्कुल. हर चीज में उन्हें संगीत सुनाई देता था. कंगी हो, कांच की बोतल हो, गाड़ी का बोनट हो, तो चम्मच को ग्लास पर टकराने से जो आवाज निकलती है उसका कितनी खूबसूरती से इस गाने में इस्तेमाल हुआ है जरा सुनिएगा. आशा भोसले से शादी हुई थी उनकी और इस जोड़ी ने एक से बढ़कर एक सुरीले गीत हमें दिए. गुलजार और आरडी का कॉम्बिनेशन भी बहुत बेहतरीन एल्बम्स हमें दिए हैं. तो वहीं 70 के दशक में राजेश खन्ना, किशोर कुमार और आरडी की तिकड़ी ने धूम मचा दी थी.
कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की.
It was at the age of 54 years in 1994 when he passed away. Lekin jaate jaate unhone ek masterpiece bhi hame de gaye, the 1942 A Love Story, for which he got the Best Music Director Filmfare Award. Can we listen to this song now?
चलते
मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य. ये लिखने वाले हिंदी के प्रसिद्ध कवि और गीतकार गोपालदास नीरज की आज जयंती है. और सच पूछे तो ऐसे कवि की रचनाओं को पढ़ना और सुनना हमारे लिए सौभाग्य की बात है. नीरज बड़ी सरल भाषा में जीवन की सच्चाई और दर्शन को बयान कर देते थे. उनकी पंक्तियां सुनिएगा कि जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, जितनी भारी गठरी होगी उतना तू हैरान रहेगा. 1925 में आज ही के दिन उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के पुरावली गांव में गोपालदास सक्सेना का जन्म हुआ जिन्हें हम और आप सब नीरज के नाम से जानते हैं. उन्होंने गीत तो लिखे ही, गीतों का राजकुमार उन्हें कहा ही जाता था. इसके साथ ही गजल, दोहे, रुबाइयां और हाइकू भी उन्होंने लिखे. फिल्मों के लिए भी गीत लिखे जिनमें नई उम्र की नई फसल, तेरे मेरे सपने, प्रेम पुजारी जैसी मशहूर फिल्में शामिल हैं. और अनुजा कौन भूल सकता है इन गीतों को, ए भाई जरा देख के चलो, फूलों के रंग से हो या खिलते हैं गुल यहां, ऐसे पता नहीं कितने ही गीत हैं. और वो गीत जिसने नीरज को घर घर में मशहूर कर दिया था, कारवां गुजर गया.
स्वप्न जगे फूल से, नींद चुगे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और गम खड़ी खड़ी बहार देखते रहे. कारवां गुजर गया वो बार देखते रहे. स्वप्न जगे फूल से, नींद चुगे शूल.
19 जुलाई 2018 को 93 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया, लेकिन अपनी रचनाओं में वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे। जैसा नीरज खुद लिख गए हैं कि नीरज तो कल यहां न होगा, उसका गीत विधान रहेगा।
Yes, he was awarded the पद्मश्री 1991 and Padma Bhushan in 2007।
और श्रोताओं, अब समय हो चला आपसे अनुमति लेने का, तो हम आपसे विदा ले रहे हैं नीरज जी के लिखे इस गीत के साथ।
फूलों के रंग से, दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे